તારીખ 5/1/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 73
હમારે યોગિન્દ્ર આચાર્ય હુએ જિસને યોગ સાર લિખા હૈ પરમાત્મા પ્રકાશ ભી લિખા હૈ ઓર યોગ સાર ભી લિખા હૈ તો યોગ સાર મેં વો કહેતે હૈ કે જો સિદ્ધ પરમાત્મા રૂપ અપના સ્વરૂપ હૈ જૈસા સિદ્ધ પરમાત્મા હૈ બિલકુલ વૈસા હી હમારા સ્વરૂપ હૈ ઇસસે કિંચિત માત્ર ભી કોઈ ફરક માનતા હૈ અપના સ્વરૂપ મેં યે વિશ્વ મેં બડા સે બડા પાપી વો હૈ જગત મેં સબસે બડા પાપી કોણ કે અપને સિદ્ધ પદ કા અનાદર કરને વાલા તો યહાં જો જ્ઞાની હુઆ ઉન્હોને અપના સ્વરૂપ કા સ્વીકાર કિયા હૈ શ્રદ્ધાન મેં ભી સ્વીકાર કિયા હૈ ઓર જ્ઞાન મેં ભી સ્વીકાર કિયા હૈ તો અનુભવ જ્ઞાન મેં હોતા હૈ તો ક્યા અનુભવ કરતા હૈ कि मैं मेरे स्वरूप से तो रागा राग के परिणाम रूप अंश जो जीव का माना जाता है कहा जाता है उसमें मेरा व्यापकपना मुझे अनुभव में नहीं आता है। मैं उसमें व्यापक होकर के इस परिणाम अंश को नहीं करता हूं। मेरे स्वरूप से मैं भिन्न रह करके वो भिन्न तत्व है पुद्गल के परिणाम है ऐसा मैं जानता हूं।
बराबर
ऐसे अनुभव को ज्ञानी का अनुभव ज्ञानी का परिणमन कहने में आया है। इधर ऐसी बात कहीं नहीं है कि जैसे घड़ा में कुम्हार का अभाव है वैसे ही राग में आत्मा का अभाव है वो बात और कहीं जगह नहीं है। ऐसा गुरुदेव कहते थे कि स्वभाव की व्याप्ति नहीं है विभाव में। विभाव में स्वभाव की व्याप्ति नहीं है। नहीं है वो तो एक हम थियोरिटिकल समझते हैं वो बात भी नहीं है। ऐसा अनुभव जिसको है उसी को हम ज्ञानी कहते हैं। उसका ऐसा परिणमन जिसको है उसको हम ज्ञानी कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोध दिखाई देता है
मैं करता नहीं क्योंकि मैं उसमें मेरा व्यापकपना वहां नहीं है। मेरा व्यापकपना मेरे स्वरूप में त्रिकाल है अभी भी है। त्रिकाल है तो अभी भी है। बस मेरी व्याप्ति को मैं मेरे स्वरूप में अनुभव करता हूं तो फिर राग में कौन व्यापता है तो कि राग में मैं तो नहीं व्यापता हूं। वो पुद्गल के संग में गया था तो पुद्गल व्यापक बना कर लिया होगा उसमें। ऐसे भिन्नत्व जो होता है इस प्रकार से जो भिन्नत्व का परिणमन होता है उसमें बहुत पुरुषार्थ होता है। स्वरूप का एकत्व भाव का व्यापक पने का बहुत पुरुषार्थ होता है। वो कोई विकल्प नहीं है। वो पुरुषार्थ का जोर कितना है वो दिखाने के लिए रागांश जीव का होने पर भी कहते हैं कि पुद्गल के परिणाम है मेरे परिणाम नहीं है। एक दृष्टांत लेते हैं समझ में आ जाएगा कि कोई खानदान परिवार है उस खानदान परिवार में कोई लड़का अकार्य को करता है। जो खानदानी में करने योग्य कार्य को नहीं करता है नहीं करने योग्य ऐसे कार्य करता है तो इनके जो पिता है लड़का का वो कहेगा कि हमारे परिवार में तो ये बात चल सकती नहीं है। लड़का बोलता है कि चल सकती हो नहीं चल सकती हो हमको तो नहीं चलेगा। हम तो जो करते हैं वो ही करेंगे। तो क्या कहेगा कि जब ऐसी ही बात है तो फिर तुम हमारा लड़का भी नहीं है। तो क्या उसके घर में वो पैदा नहीं हुआ था क्या? लड़का कहां पैदा हुआ था? क्या पड़ोसी के लड़के को कहने की जरूरत पड़ती है कि तुम हमारा लड़का नहीं है? वो जरूरत पड़ोसी के लड़के के लिए कहने की आवश्यकता कभी पैदा होती है कि तुम हमारा लड़का नहीं है, घर में से निकल जाओ तुम? जो अपना लड़का है उनको कहने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम निकलो घर से, यहां से निकल जाओ, तुम हमारा लड़का नहीं है। यही पद्धति है इधर कि राग है वो स्वरूप से बिल्कुल विरुद्ध है, स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध है। तो राग पुद्गल के परिणाम है, वो घर से निकालने का न्याय है। राग अपना दोष स्वीकार करने में भी उसको निकालने का न्याय है, और अपना नियम उसमें भी निकालने का न्याय है। प्रयोजन नहीं बदलता, भाषा बदलती है, शैली बदलती है, प्रयोजन बदलता नहीं है। इसलिए कथन में विरुद्धता नहीं है, अविरोध कथन है वो। इस तरह से वो समझना चाहिए कि ज्ञानी का जोर कितना है, कि ज्ञानी का उतना जोर है कि वो अपने आप को अपने स्वरूप में ही व्यापक रूप अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप के बाहर अपने स्वभाव की व्याप्ति को अनुभव करते नहीं है, और जो अनुभव करते हैं वो ज्ञानी नहीं होते, ऐसा कहने का अभिप्राय है। वो ज्ञानी नहीं होते हैं क्योंकि स्वरूप तो स्वभाव तो अज्ञानी का भी पलट करके राग रूप नहीं हुआ है, सिर्फ अज्ञानी अपने स्वरूप को भूल करके राग रूप में हुआ हो ऐसा मिथ्या अनुभव करता है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा। जो राग में तन्मय होकर के, राग में एकाकार होकर के राग रूप अपने आप को अनुभव करता है उसको अज्ञानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए तो उसको अज्ञानी कहने में आता। अगर ऐसा वस्तु का स्वरूप होता है तो उसको अज्ञानी कहना नहीं चाहिए, उसको ज्ञानी कहना चाहिए, अज्ञानी नहीं कहना चाहिए उसको। लेकिन ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, यह आचार्य महाराज यहां दर्शाते हैं। कोई बात कहने का यहां जो मुद्दा है वो उसी प्रकार का मुद्दा है। अब देखें कि पुद्गल जो स्वतंत्र व्यापक होने से वो कर्म है, इसलिए पुद्गल द्वारा कर्ता होकर के कर्म रूप से करने में आने वाला जो समस्त कर्म और नोकर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उसको जो आत्मा पुद्गल परिणाम और आत्मा को घट और कुम्हार के जैसे व्यापकता का अभाव के कारण से कर्ता कर्म पणा के असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं है, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम का ज्ञान का कर्मपणे कार्य रूप से करता हुआ ऐसा अपना आत्मा को जानता है, वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। जैसे ज्ञानी है, जो बात अपने सीधी लिया वही बात आचार्य महाराज ने अपनी भाषा में लिया है, जो सरल भाषा में बात ली वही बात है। फिर से पुद्गल द्वारा कर्ता होकर के कर्मपणे करने में आने वाले समस्त को कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम, उसमें पुद्गल की व्यापकता है। मेरी आत्मा व्यापक नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या कि मेरी व्यापकता उसमें नहीं है। मेरी व्यापकता नहीं है ऐसा विकल्प विचार नहीं है, ऐसा अनुभव है, अनुभव की बात है इधर। तो अगर ऐसा अनुभव भीतर में जिसको होता है तो वो अवश्य ज्ञानी है, और ऐसा अनुभव नहीं होता है तो अवश्य वो अज्ञानी है। तो स्वभाव की पकड़ कितनी होगी, अपने श्रद्धान ज्ञान में स्वभाव की पकड़ कितनी होगी, इसका अंदाज निकालना चाहिए। परिणमन तो आएगा तब वो बात समझ में आएगी, जहां तक वो परिणमन नहीं आएगा वहां तक वो अनुभव समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव अनुभव से समझा जाता है, अनुभव विकल्प विचार से समझा नहीं जाता। जैसे हमारे खाद्य पदार्थ है, ये गुड़ है, उसका कलर अच्छा होने से वो अच्छा माना जाए या चखने से अच्छा है ऐसा माना जाए, इसकी मिठास कैसे देख सकेंगे, कलर से देख सकेंगे, देखने से पता चलेगा कि नहीं। देखने में कितना भी अच्छा हो लेकिन हो सकता है कि इसकी मिठास में खारापन भी हो सकता है, गुड़ बनाते हैं नमक डालते हैं तो गुड़ बनता है, केमिकल भी डालते हैं लेकिन खारास तो पिछानने में आती है उसके, तो जिसमें खारास कम हो तो मिठास ज्यादा है, खारास ज्यादा हो तो मिठास कम लगती है। अब वो देखने से वो पता चलेगा नहीं। ऐसे ये जो अनुभव की बातें हैं वो अनुभव से पता चलता है, मात्र विचार से सुनने से बोलने से विकल्प करने से उसका पता नहीं चलता है। वो जो दुख रूप वेदन होता है उसमें भी वो व्यापकपना का अभाव स्वभाव का तो है ही, जो अगर दुख में स्वभाव व्यापक हो जाता तो स्वभाव में सुख दुख हो जाता, लेकिन होता है क्या, किसी आत्मा का स्वभाव मिट करके दुख रूप होता है क्या, तो ज्ञानी का भी नहीं होता, और ज्ञानी तो ऐसा अनुभव करते हैं उसके लिए उसको ज्ञानी कहते हैं। यहां जो कहने का व्यू पॉइंट है वो पकड़ना है, वो थोड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म इसलिए वो अनुभव का विषय है इसलिए सूक्ष्म है, क्योंकि हरेक की दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, तो हमारा जो परिणाम है उसी से हम नाप निकालेंगे ज्ञानी का,
बराबर,
हमारे परिणाम से ज्ञानी का नाप नहीं निकलता, क्योंकि हमारा परिणाम में हमारा अनुभव है वो विपरीत अनुभव है, हमारा अविपरीत अनुभव नहीं है लेकिन विपरीत अनुभव है, इसलिए हमको वो बात सहत नहीं होती। वैसे तो हम कहेंगे वो अत्यंत दृष्टि प्रकाश में उपयोग बाहर जाता है, दिवादिक प्रति दिवादिक में देव गुरु शास्त्र आदि प्रति उपयोग जाता है, धर्म का भी जाता है, तो उनको भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए, तो वो बात कहां से आई, वो भी ज्ञानी की बात है और अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो वहां आत्म शांति की बराबरी में कंपेरेटिव टू कंपेरिजन किया है वहां, क्यों कितने आत्म शांति को अनुभव करते हैं जब उनको थोड़ी भी अशांति बहुत बड़ी लगती है, उतना ही व्यू पॉइंट है वहां, तो वो आत्म शांति का द्योतक वचनामृत है। ऐसे कहने वाले ने अवश्य अपनी आत्म शांति को अनुभव में लिया है तब तो वो ऐसा कहते हैं, वरना तो देव गुरु शास्त्र के प्रति मंदकषाई के परिणाम में तो मानसिक शांति का अनुभव होता है, मानसिक शांति को भी भट्टी जैसा दुख कहने वाले को आत्म शांति का परिचय हुआ है अनुभव हुआ है तब तो वो कह सकते हैं। तो वहां भी ज्ञानी को पिछानने में कोई दूसरा व्यू पॉइंट है, यहां भी ज्ञानी को पिछानने में कोई दूसरा व्यू पॉइंट है, बात अलग अलग है।
निश्चय से आज तक किसी अज्ञानी ने दुख का वेदन किया है क्या?
नहीं किया, ऐसे परिणामों में मंदकषाय के परिणामों में भट्टी जैसा दुख का वेदन अज्ञानी ने किया है क्या?
कभी
नहीं किया है, लेकिन कुतर्क भी लड़ाते हैं, तो ऐसे लड़ाते हैं कुतर्क कि फिर तो तीव्र कषाय हो गया, मंद कषाय भी मान नहीं रहा, इसलिए वो ज्ञान ही नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा तर्क आया था। गुरुदेव ने बोला तो बहुत चर्चा का विषय बना ये उत्तनामृत, एकदम चर्चा का विषय बना था। गुरुदेव ने बोला कि जो इस विषय को जिसने आत्म शांति का अनुभव नहीं किया, जिसने आत्मा की शांति नहीं जानी, वो इस बात को नहीं समझेगा। जिसने आत्म शांति का अनुभव किया वो वही इस बात को समझ सकेगा, ऐसा करके बोले। तो कहने की शैली अलग अलग प्रकार की होती है, और वहां ज्ञानी का ज्ञानीपना सिद्ध होता है दोनों जगह। कषाय की मंदता को भट्टी जैसा कहने में भी ज्ञानी का ज्ञानीपना सिद्ध होता है, और राग के एक अंश में भी अपना व्याप्त व्यापकपना नहीं है, मैं सर्वथा भिन्न रहता हूं, यही अनुभव भी ज्ञानी का होता है। तब ज्ञानी उस परिणाम का को क्या बनाता है, को ज्ञान का गेय बना देता है, क्या वो ज्ञान का गेय बना देता है। एक अपेक्षा से वो ज्ञानी के अंश रूप परिणाम होने पर भी वो ज्ञान ज्ञान का सम्यक ज्ञान का गेय बन जाता है, भिन्न गेय बन जाता है। पर के खाते में वो खताते हैं, वो अपने खाते में खताते
नहीं,
नहीं है।
इसी का नाम ज्ञान धारा,
इसी का नाम ज्ञाता धारा, ज्ञान धारा, ज्ञातृत्वपना उसी को कहने में आता है। यही ज्ञानी की दशा, यहां से ज्ञानी पहचाना जाता है। जहां तक वो बात सच भी होती है वहां तो ज्ञानी का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, ज्ञानी पहचाना नहीं जाएगा। आचार्य महाराज को तो वो कहना है, अमृत चंद्र आचार्य महाराज जो टीका कर रहे हैं उनको तो वो कहना है कि ये गाथा तो ज्ञानी का स्वरूप दिखाने वाली है, इसलिए ज्ञानी कैसे पहचाना जाए वो प्रश्न उठाया खुद ने। कुंदकुंद आचार्य ने तो गाथा ही लिखी है, उन्होंने प्रश्न उत्तर कहीं नहीं लिखा, लेकिन टीकाकार आचार्य महाराज ने जो जो गाथा के विषय को समझे, अपने ज्ञान में जो बात आई तो उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए इसका प्रश्न उठा लिया पहले, कि किस प्रकार का प्रश्न हो तो ये गाथा इसके उत्तर रूप में बराबर बैठती है, ऐसा करके विषय को और स्पष्ट किया है। तो इसलिए यहां कहा कि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार की, पुद्गल परिणाम और आत्मा वो सिद्धांत है, घट और कुंभार दृष्टांत है, उसकी तरह व्यापक भाव का अभाव के कारण से, पुद्गल परिणाम और आत्मा का व्यापक भाव का अभाव किस तरह से, घट और कुंभार के भांति अभाव होने के कारण से, कर्ता कर्मपना की असिद्धि होने से, परमार्थ से वास्तविक रूप से कर्ता नहीं है, आत्मा वास्तविक रूप से रागादि का कर्ता नहीं है, निश्चय से आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, कर्ता है तो व्यवहार से है किंतु निश्चय से नहीं है। जो बात आई ना कि परिणाम में तो कर्ता हुआ कि नहीं हुआ, उसका परिणाम अंश है कि नहीं है, तो वो व्यवहार से है, किससे है, ये व्यवहार से है। व्यवहार से इसका मतलब क्या, कि निश्चय से नहीं है, ये इसका मतलब है। हाँ, आरोपित है, स्वभाव पे आत्मा पे आरोप किया गया कि आत्मा ने राग किया, ज्ञानी ने ऐसा राग किया, वो इसका इसके पर आरोप है, क्या इसके पर आरोप है, क्यों आरोप है, कि खुद ऐसा अनुभव नहीं करता, इसलिए खुद ऐसा अनुभव करता होकर के वो राग उन्होंने किया ही नहीं। अगर करता होकर के किया होता तो व्यापक व्यापकपना का अनुभव होता, लेकिन व्यापक व्यापकपना का अनुभव तो वहां नहीं हुआ उनको, तो अनुभव क्या हुआ, कि अनुभव तो ये हुआ कि मैं तो मेरे स्वभाव की सीमा में हमेशा हमेशा रहता हूं, मेरी स्वभाव की सीमा को उल्लंघन करके मैं कभी बाहर नहीं निकला। भूतकाल में भी अनंत काल में मैं भी बाहर निकला, सीमा का उल्लंघन होना संभवित नहीं है स्वरूप को। तो फिर हम तो राग द्वेष करके परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका फल भोग रहे हैं, अनंत काल तो ऐसा ही गुजरा, तो कि ये हमारी भ्रांति थी। क्या था?
भ्रांति।
वो भ्रांति थी, भ्रांति मिट गई तब तो ज्ञानी हुए। इसलिए ज्ञानी अपनी स्वभाव की सीमा में रहे हुए अपने आप का अनुभव करते हैं, और जो कर्म और बुद्धल कर्म और नोकर्म के परिणाम है उनको बुद्धल उनके ज्ञान को कर्मपणे करते हैं। क्या कहा यहां? तो फिर अपना कर्म क्या रहा कि उस संबंधित जो ज्ञान हुआ वो ही अपना कर्म है। अब आपका ये प्रश्न आएगा अजीत भाई जी कि पुद्गल कर्म का ज्ञान तो ज्ञान विशेष हुआ ने, तो यहाँ ज्ञान विशेष आविर्भूत हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। भिन्न रूप ज्ञाता रहे वो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होते हैं तो भिन्न रूप ज्ञाता रहते हैं, और कर्म के परिणाम का भी ज्ञाता रहते हैं। मतलब क्या? भिन्न रूप ज्ञाता रहते हैं। हम हमारे दृष्टिकोण से ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने इस किताब को जाना तो हम भिन्न नहीं रहे। जानने के काल में जब हम भिन्न नहीं रहे, ऐसे ज्ञानी ने भी जाना तो वो भी भिन्न नहीं रहे, ऐसे हम जान लेते हैं, मान लेते हैं। ये हमारी दृष्टि गलत है, हमारी नाप करने की परिस्थिति गलत है। ये कोई राग द्वेष का विषय नहीं है। मान लो एक पेड़ दिखता है, मकान दिखता है, कोई राग द्वेष का विषय थोड़ा होता है? तो अज्ञानी भी इसको जानता है और ज्ञानी भी इसको जानता है, दोनों क्या एक 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 प्रकार से जानता है क्या?
नहीं
नहीं। बसने बसने में वो कुत्ता का दृष्टांत लिया ने धर्मदास जी क्षुल्लक में। यहाँ ज्ञानी जानता है तो उसको अवलंबन करके जान लेता है कि मैं उसको जानता हूँ। ज्ञानी इसका अवलंबन लेकर जानता नहीं है, वो भिन्न रह करके जानता है। तो जानने जानने में बहुत अंतर है। ज्ञानी को इसका अवलंबन नहीं आता, इसलिए एकत्व नहीं होता। तो अज्ञानी जानता है तो निर्णायक संकर दोष उत्पन्न होता है, और ज्ञानी जानता है तो भेद ज्ञान में रह करके जानता है, उसका परिणाम भेद ज्ञान रूप है।
परिणति से तो भिन्न है ज्ञानी, उपयोग से भी भिन्न।
उपयोग से भी भिन्न है। ये तो कहते कि एक अंश को भी नहीं मिलाता, इसलिए वो बात लिया है कि ज्ञानी अपने ज्ञान में ज्ञेय का एक अंश को भी नहीं मिलाता, चाहे वो ज्ञेय राग रूप हो चाहे वो ज्ञेय शरीर रूप हो। दोनों कर्म के पुद्गल के परिणाम है, उसको पुद्गल के परिणाम क्यों कहे? मुद्दा तो वो है, जबकि जीव का गुहार अंश है, रागांश है, परिणाम का अंश है, उसके पुद्गल के परिणाम क्यों कहें? कि जैसे पुद्गल सर्वथा भिन्न रहता है अनुभव में, वैसे ही राग रूप अंश भी सर्वथा भिन्न रहता है। ऐसा परिणमन है, तो एक अलौकिक परिणमन है, इसलिए ज्ञानी भी ज्ञानी को बंधन करते हैं। शांत दशात इनकी पहचानी, करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। ज्ञानी भी इसको बंधन करते हैं, ज्ञान दशा को ज्ञानी भी बंधन। कृपाल देव ने कहा करें, ते ज्ञानी ना शरण मा हो मंदन अगणित। क्या ज्ञानी ना ते ज्ञानी मा कौन के जे ज्ञानी एवा हो ते के ते जे मैंने जे बिटले कौन कि देह छता जैनी दशा वरते देहातीत। देह पुद्गल का है, जिसकी दशा देह से अतीत है, भिन्न है, पार है, ऐसे जिसका अनुभव वर्तता है, ऐसा कोई भी ज्ञानी हो, हमारा अगणित वंदन है उसको। ऐसी ज्ञान दशा को हमारा अगणित वंदन है। तो ज्ञानी ने वंदन किया कि नहीं किया? हो वंदन अगणित। एक ऐसी बहुत अलौकिक दशा होती है, जो दशा का की पहचान आती है तो मस्तक नत हुए बिना रहता नहीं, ऐसा हो ही जाता है। ओहो, ऐसी बात है, अंतर में ऐसी बात है कि अपना राग भी ज्ञेय हो गया, परिज्ञेय हो गया, पुद्गल के परिणाम हो गया, कितनी जबरदस्त पकड़ होगी। वरना तो संसार के उदय के प्रसंग ऐसे होते हैं कि जिसको जिसमें ज्ञानी को भी धड़ पे मस्तक रखना मुश्किल हो जाए, ऐसे प्रसंग बनते हैं। कृपालु लिखते हैं, लिखते हैं कि इन दिनों में हमारी परिस्थिति ऐसी है कि धड़ पे मस्तक रखना कठिन हो जाए। ऐसे मस्तक तो धड़ पर ही रहता है लेकिन नहीं रख सके, ऐसी बात हो जाती है। धड़ मैंने बाकी का शरीर, यहाँ से नीचे का शरीर को धड़ कहते हैं, ऊपर को मस्तक कहते हैं। ऐसे संसार के उदय ऐसे बहुत उत्पटांग विचित्र होते हैं कि एक दफे ज्ञानी को भी अंदर से हिल जाए ऐसी परिस्थिति होती है। जब नहीं हिलता है तो ज्ञानी ज्ञानी को वंदन करते हैं कि वाह, ऐसे प्रसंग में भी ज्ञानी भिन्न रहते हैं, परज्ञ की तरह जानते हैं, अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने दुख को, अपने सुख को परज्ञ की तरह जान देते हैं। क्या भिन्नता है, क्या भिन्न रूप अनुभव है, कितनी अपने स्वभाव के अंदर में श्रद्धा ज्ञान में पकड़ है और कितना जोर है, कितना पुरुषार्थ है। पांच सात मिनट आगे चल गई है, यहां तक रखे, आगे का विषय नहीं।
स्पष्टीकरण, ज्ञान 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 का जो पर्याय है वो पर्याय में ज्ञपणा है, ज्ञपणा है, जिसके साथ ज्ञान वेदन भी है, वो ज्ञान सामान्य है। यानी ज्ञानाकार ज्ञान है वो ज्ञान सामान्य है, और जो ज्ञेयाकार ज्ञान है जिसमें अनेक ज्ञेय झलकते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो ज्ञान विशेष है। ज्ञान विशेष का तिरोभाव और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव किस प्रकार से करना, 15 गाथा में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि जैसे कोई व्यंजन होता है, व्यंजन मैंने खाने की जो नमकीन आइटम होती है, दाल हो या सब्जी हो या कोई भी नमकीन आइटम हो, उसमें हम नमक को अलग तरह से पकड़ते हैं स्वाद में, दूसरे दूसरे अनेक मसाले होते हुए भी इसमें नमक ठीक मात्रा में है या अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है, इसका निर्णय हम कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं इसका प्रैक्टिकल वहां दिया है, तो वो प्रैक्टिकल हम हमारे अनुभव से समझें, प्रयोग से समझें कि जब हम उसके नमक को निर्णय करते हैं, नमक के स्वाद को कि इसकी मात्रा कैसी है, इसका प्रमाण कैसा है, तो हमारा एक उद्देश्य ज्ञान में खड़ा हो जाता है कि हमें सिर्फ नमक को ही स्वाद में लेना है, साथ में रहे हुए दूसरे दूसरे मसाले के स्वाद को हमें ज्ञान में नहीं लेना है, यानी उसको गौण करना है। तो जब ज्ञान की प्रवृत्ति, उस वक्त ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है कि ज्ञान इस वक्त को एक उद्देश्य को धारण करके प्रवृत्ति करता है कि हमें सिर्फ नमक का स्वाद को ही लक्ष्य में लेना है, दूसरे दूसरे स्वाद वहां होने पर भी हमें वो लक्ष्य में लेना नहीं है। इस तरह से ज्ञान में एक उद्देश्य धारण करके ये प्रवृत्ति होती है। यहां पर भी जिसने अपने स्वभाव के भाव भाषण के काल में अनुभवांश से, मैंने वेदन अंश से स्वरूप को लक्ष्यगत किया है, पहचान लिया है, लक्ष्यगत किया है, उनको अपना वेदन समझ में आया है, जब वो अपने ज्ञान के व्यापार में सिर्फ मात्र ज्ञान को लक्ष्य में लेने का उद्देश्य को धारण करके ज्ञान मात्र में अपनत्व करता है, मैंपना करता है, तब ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो जाता है और ज्ञान विशेष का तिरोभाव होता है। उस तरह से आविर्भाव तिरोभाव की प्रवृत्ति होती है।
विशेष ज्ञान ही करता है
जी,
विशेष ज्ञान ही ये सब करता है।
विशेष ज्ञान,
सामान्य ज्ञान,
हाँ, तो विशेष ज्ञान निराकार के प्रति ढला हुआ था, वो उद्देश्य कौन धारण करता है, विशेष ज्ञान धारण करता है। तो जो न्यायकार के प्रति इनकी जो प्रवृत्ति है वो स्वतः जो है वो गौण होकर के या बंद होकर के ज्ञान सामान्य को लक्ष्य में लेती है। हाँ, न्यायकार बंद हो जाता है या नहीं के बराबर दुर्लक्ष रूप हो जाता है। दुर्लक्ष रूप, जैसे कि मैं बोलता हूं लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है, तो सुना अनसुना हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से हो जाता है।
रागादी
की तो कोई चिंता ही नहीं, जो है सो अपने में है, दुर्लक्ष हो गया फिर क्या। जब ज्ञान विशेष पर दुर्लक्ष हो गया तो रागादी की तो चिंता ही कहां करने की रही। जहां ज्ञान सामान्य है वहां ज्ञान विशेष है, फिर भी ज्ञान विशेष का दुर्लक्ष हो गया तो रागादी का तो हो ही गया, इसकी तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रही। वेदन ही मैंपने रूप आता है, लेकिन जोर आना चाहिए, आविर्भाव करने में जोर आना चाहिए। इसलिए तो पहले बात लक्ष्य की ली कि जिसको लक्ष्य हुआ हो उनको ऐसा होता है, जिसको लक्ष्य में आया ही नहीं, वेदन अंश से स्वरूप लक्ष्य में ही नहीं आया हो, उसको आविर्भाव होने का जो प्रयोग है वो प्रयोग बन पाएगा नहीं, सकेगा नहीं, वो बात है।
तिरोभूत कहो या लब्धि रूप कहो, एक ही अर्थ है। तिरोभूत हो जाता है विशेष व्याकार ज्ञान, इसका अर्थ लब्धि रूप हो जाता है।
अब उसका लक्ष्य नहीं तो फिर हम लब्धि रूप करके क्या करना चाहते हैं, उसको लक्ष्य में लेना रखना चाहते हैं क्या। अब तो जो प्रयोग जिस ढंग से होता है उस ढंग को हम प्रयोग में ले लें, बाकी के विकल्प में हम क्यों जाएं। बाकी के विकल्प में जाने से क्या फायदा है, कोई फायदा तो नहीं। ये जो हो रहा है प्रवृत्ति तो उपयोग में हो रही है सब प्रकार की, लब्ध में तो बहुत सी कुछ पड़ी है, कई बातें पड़ी है, अब इसके क्यों बीच में ले आए।
बल जो है वो आश्रय का अवलंबन का।
हाँ,
बल जो है वो आश्रय अवलंबन का।
कौन?
सामान्य ज्ञान में जो बल प्रकट होता है वो आश्रय से होता है।
बल प्रकरण
बल बल बल
बल बल हाँ वो हाँ वो क्या है कि प्रत्यक्षता के कारण से बल ज्यादा आता है। जो वेदन अंश से लक्ष्य में आया वो लक्ष्य में आने वाला जो स्वरूप है वो सहज अनंत प्रत्यक्ष है। क्या है? सहज अनंत प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्षता से बहुत बल आता है। इसकी प्रत्यक्षता जो लक्ष्य में रहती है तो बल ज्यादा आता है।
तो वेदन ख्याल में आने के बाद, पहले वेदन ख्याल में आने के लिए जो आश्रय करते हैं सामान्य ज्ञान का,
नहीं उसमें क्या है कि लक्ष्य के बिना तो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होगा नहीं। स्वरूप लक्ष्य में आए बिना ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होने का प्रयोग बन पाएगा नहीं, क्योंकि ये जो दशा है अनुभव करने की ये विधि है। तो वो कार्य पद्धति में अनुभव के पहले स्वरूप लक्ष्य होना ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है।
बराबर।
एक पात्रता के अलावा ऊपर ऊपर की सब जो जितनी भी दशाएं हैं ऊंची ऊपर ऊपर की दशा उच्च कोटि की वो सब में अगली दशा का कंडीशन होता है। इसलिए लिया था ना कि केवल ज्ञान में मुनिपना की कंडीशन है। केवल ज्ञान कब होता है कि अंतर्मूर्त में स्थिर हो जाए, तब धर्म ध्यान में अंतर्मूर्त सिद्ध जो स्थिर हो जाए तो शुक्ल ध्यान हो करके केवल ज्ञान पैदा हो जाएगा। लेकिन अंतर्मूर्त कौन टिक सकता है कि मुनि दशा योग्य वितरागता होती है, वो चतुर्थ गुण स्थान वाला केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता सीधा कि चलो हम तो स्वरूप में तो स्थिर होते हैं तो अब अंतर्मूर्त रह जाए, नहीं बन पाएगा। पंचम गुण स्थान वाला का नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए मुनि दशा में आना अनिवार्य है। वो सब्जेक्ट टू कंडीशन केवल ज्ञान होता है। मुनि दशा के सम्यक दर्शन के बिना किसी को होती नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन और स्वानुभव स्वरूप निश्चय और स्वरूप लक्ष्य और स्वरूप पहचान बिना नहीं होता। ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि वेदन अंश से वो लक्ष्य में आया तो वो लक्ष्य में आया वो चीज सहज अनंत प्रत्यक्ष है। जब चीज सामने आती है तो रस का आविर्भाव होता है। जैसे हमको हमको पंचेंद्र के विषय में क्या होता है कि जो विषय हमको सुहाता है वो जब सामने आता है तो रस बढ़ता है, प्रत्यक्ष होता है तो, और दूर रहता है तो उसका रस उतना नहीं होता है। तो ऐसा ये जो है वो सहज प्रत्यक्ष है वो बल को उठाता है, वो बल को पैदा कर देता है। है थोड़ा प्रैक्टिकल साइड का विषय है। अरे मैं इतना प्रत्यक्ष हूं, मेरा सिद्ध स्वरूप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, अनंत प्रत्यक्ष है, जोर आएगा। दरिद्र को घर में गाड़ी हुई संपत्ति देख करके जोर आता है कि नहीं आता है कि मैं दरिद्री नहीं, मैं पैसा वाला हूं, कहां से आया जोर? देखा इसलिए आया, संपत्ति को देखा इसलिए आया। ऐसे स्वरूप संपत्ति को प्रत्यक्ष तौर से जो देखता है तो उसमें ताकत आती है परिणमन में सहज।
ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है,
हाँ,
वस्तु तो प्रत्यक्ष मौजूद है।
हाँ?
पीछे बैनर लगा हुआ है,
हाँ,
वस्तु तो प्रत्यक्ष मौजूद है।
हाँ,
बस इसी में पसर कर बैठ जाना, विराजमान हो जाना।
हाँ, ठीक है।
तो ये स्वरूप लक्ष्य के बाद की बात
है।
स्वरूप के लक्ष्य के बाद
वो तो अनुभव की बात है, वो तो अपना अनुभव लिखा है। सुगानी जी ने तो अपना अनुभव लिखा है, सुगानी जी का वचन है ये कि वस्तु तो प्रत्यक्ष मौजूद है, मेरे मेरे वस्तु तो मेरे प्रत्यक्ष है, बस हमको वहां जमे रहना है, तो वस्तु प्रत्यक्ष है तो उसका विकल्प क्या करना, विचार क्या करना है। जो परोक्ष चीज होती है इसका विकल्प विचार आ सकता है, जब वस्तु प्रत्यक्ष है तो उसका कोई द्रवगुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव गुण गुणी भेद का विचार नहीं करना पड़ता। आराधन समय, आराधना के समय पे कोई विकल्प नहीं होता, क्यों कि वस्तु प्रत्यक्ष है। पछको अनुभव जम्मा, जहां प्रत्यक्ष आत्मा है तो आराधन समय में तो आत्मा प्रत्यक्ष होता है, विकल्प क्यों फिर? आप मेरे सामने बैठे हो, आपका विकल्प क्यों करना? आप नहीं हो तो आपका विकल्प आता है, स्मरण आता है, सामने बैठे वाला का स्मरण और विकल्प का सवाल नहीं पैदा होता, बस उतनी प्रैक्टिकल बात है।
उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कोई कंडीशन नहीं प्रत्यक्ष होने के लिए, आगे आगे जो कंडीशन आई केवल ज्ञान के लिए ये कंडीशन।
इसके लिए स्वरूप, जो स्वरूप स्वरूप लक्ष्य है उसको उसको अनुभव आएगा ज्ञान का, सामान्य का आविर्भाव हो करके
स्वरूप लक्ष्य,
उसको स्वरूप लक्ष्य का कंडीशन है। फिर आप कहेंगे कि स्वरूप लक्ष्य वाले को कोई कंडीशन है कि नहीं है, कि उसको भी है। हाँ, उसको सत्पुरुष की पहचान होनी चाहिए, तो उसकी कोई कंडीशन है।
प्रयोगात्मक पहला ने बीजा नहीं बच्चे, संकित ने बीजा संकित नहीं बच्चे, प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मक भूमिका सूच है। ठीक बात है, उसके प्रयोगात्मक भूमिका वो है कि जो आत्मकल्याण के लिए जो थियोरिटिकल समझ उसको जो भी समझ में आती है, शास्त्र वाचन से या स्वाध्याय से या श्रवण से या चर्चा से, उनको वो अपने परिणमन में लागू करने का प्रयास करता है, ये इसका प्रयोग है। टू अप्लाई दी थियोरी इन प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल, ये इसका प्रैक्टिकल प्रयोग है। हाउ टू अप्लाई? अच्छा, देखिए हमने ये सुना कि राग तो दुख रूप है, तो क्या वो हमारा जो थियोरिटिकल नॉलेज है कि राग दुख रूप है, वो दृष्टांत लेते हैं, तो क्या हम प्रयोग करते हैं जब राग हमारे अनुभव में आता है तो उसमें दुख है कि नहीं है, उसको हम देखते हैं क्या, उस बात को हम लागू करते हैं कि उसमें दुख है कि नहीं है, उसका अवलोकन करते हैं, उसकी जांच तलाश करते हैं, तो प्रैक्टिस होगी। मान लिया हाँ राग तो दुख रूप है, भगवान कहते हैं, आगम कहते हैं, और युक्ति से भी मालूम पड़ता है कि हर राग को छोड़ना पड़ता है, पश्चात दुख वो बस सुख नहीं,
पश्चात दुखते सुख नहीं,
पश्चात दुखते सुख नहीं, पीछे से दुख होता है इसलिए सुख नहीं, तो युक्ति नहीं। जब होता है तब दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है, ज्ञान को वहां उपयोग को वहां लगा करके अपने अनुभव को तलाश करो और निश्चय करो अपने परिणमन का, हाँ तब तो प्रैक्टिकल नॉलेज होएगा इस बात का, वरना थियोरेटिकल नॉलेज है उसमें वो बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि दुख है वो अनुभव का विषय है, वो विचार करने का विषय नहीं है। दुख विचार से समझा नहीं जाता, दुख दुख का अनुभव से समझा जाता है,
बराबर
इस तरह से हर बात को। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि प्रथम संकेत और दूसरे संकेत के बीच में प्रयोग कौन सा है, अवलोकन का प्रयोग है,
बराबर
कौन सा प्रयोग है? अवलोकन में क्या होता है कि जो हमारी समझ है उनको हम हमारे अनुभव के परिणमन में से देखने का, अवलोकन करने का, लागू करने का प्रयास करते हैं, तब हमको इसका प्रैक्टिकल ज्ञान भावभाषण रूप में आने लगता है। जैसे जैसे भावभाषण होता है वैसे वैसे निर्मलता होती है तो भावभाषण होता है, और जैसे जैसे भावभाषण होता है दर्शन मोह का अनुभव टूटता जाता है और आगे करके आगे जा करके स्वरूप निश्चय हो जाएगा, उस स्वरूप का भावभाषण हो गया। इस तरह से अवलोकन का प्रयोग वहां है बीच में। अवलोकन की तो बहुत चर्चा चली है।
Your part and parcel of your daily program.
It should be the part and parcel of our life, not daily program.
Correct.
Of our life. Not only daily program, क्योंकि daily program तो सीमित होता है, ये तो continue रहना चाहिए। It should be continue. इसलिए not the part and parcel of the life. Of the program, part and parcel of the life.
नहीं, हमारे संसारी लोगों के जितने भी सवेरे से लेकर शाम तक हम सोने जाते हैं, जो प्रोग्राम है उसमें इसको कहाँ फिट करें?
हर जगह फिट करो, खाते खाते भी फिट करो, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खा रहे हैं तो हमको स्वाद लगता है या स्वाद जानने में आता है? स्वाद तो जानने की चीज है, लगने की चीज है ही नहीं, क्योंकि लगने में तो ज्ञान में आना पड़े उसको, तो ज्ञान में तो प्रवेश है नहीं। खाने के परमाणु की जो स्वाद की पर्याय है उसका ज्ञान में तो प्रवेश नहीं है, फिर लगेगी कहां से? वो तो एक जानने का विषय रह गया। लेकिन जब हमने सुना कि ये जानने का विषय है, लगने का विषय नहीं है, तो हमारे परिणमन में हम देखें, अवलोकन करें तो लगता है या जानने में आता है, क्या होता है? लगता है तो हमारी गलती है, अध्यास है, भ्रम है, और जानने में आता है तो वो सही है। अब बोले कि खाना नहीं खाते, अभी तो बैठे हैं, अभी क्या करें? आप तो ये भी पूछ सकते हो कि अभी ठंड है, वो लगती है जानने में आती है? आपको भी बहन क्या है, क्योंकि लगती है, हम कहते कि आपको लगती नहीं है, जानने में आती है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यू गेट इट ऑब्जर्व, और इतना ऑब्जर्वेशन करिए, इतना माइनट ऑब्जर्वेशन करिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये लगती नहीं है, जानने में आती है। लगती है हमारा भ्रम है। तो आप निरंतर सिर्फ प्रोग्राम में थ्रूआउट दी लाइफ कंटिन्यू आप ये प्रयोग कर सकते हो और करना भी चाहिए।
आपने 10-12 दिन तक जो ये मैंने रसा हमको दिया तो उसमें से जो पाया, तो यहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ ठोस हमारे लिए प्रोग्राम चाहिए।
हाँ, वो आप
ये क्या पढ़ना चाहिए, कैसा ये नहीं, ताकि हम अगले शिविर में दौड़ के पड़े आकर अपने अनुभव।
ऐसा है,
ये मेरा
ये आपको अपना होमवर्क लेके जाना चाहिए और होमवर्क करके फिर आना चाहिए। अगले शिविर की भी देर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई निश्चय नहीं है कि हम शिविर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हम तो नहीं भी लगाएंगे तो ठिकाना नहीं है हमारा तो शिविर लगाने का भी। तो बात है कि आपको होमवर्क लेके जाइए और होमवर्क हो जाए तो कभी भी आ जाइए, हम आगे का होमवर्क देंगे, ठीक है?
जैसे अभी बैंक में 10 लाख रुपया किसी का रखा है,
हाँ,
और उसको बराबर प्रतीति में रहता है कि मेरा बैंक में इतना रुपया है,
हाँ,
यदि रात को 2 बजे नींद में से उठाया जाए,
हाँ,
और उससे पूछा जाए कि तेरे पास कितना रुपया है, तो वो तुरंत बता देगा बैंक में इतना रुपया है, वो किस तरह से लाइफ में फिट हुआ उसी तरह से इसको फिट करना।
हाँ ठीक है, एकदम फिट कर देना जो स्मरण विस्मरण का विषय नहीं रहे, लक्ष्य का विषय हो जाए, ऐसा कर देना कि हमारी संपत्ति कितनी है, स्वरूप संपत्ति कितनी है, वो लक्ष्य में रहनी चाहिए, जरूरत नहीं है कि उसका स्मरण करना पड़े। इस तरह से
दो प्रकार की है, राग में दुख है पहले तो मानते ही ज्ञानी के वचन से सुना के राग में दुख है तो ये हमारे समझ का भी प्रयास में चला, अब अनुभव में हमको दूसरा आ रहा है इस प्रकार से
आत्म जागृति में दिया है तो भूल दो प्रकार की होती है, एक समझ की और एक अनुभव की। समझ की भूल जो गैर समझ है वो सही समझ से निकलेगी, और अनुभव की भूल तो अनुभव से निकलेगी, वो समझ से नहीं निकलेगी। हम भूल वहां करते हैं कि भूलते हैं अनुभव की और समझ से निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए बार बार समझने को बैठ जाते हैं। लेकिन अनुभव की भूल है वो अनुभव से निकलेगी, समझ की भूल तो समझ से हमने निकाली गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने बहुत समझाया, पहले नहीं समझते थे, अब समझने लग गए तो गैर समझ तो हमारी दूर होगी लेकिन अनुभव की भूल तो खड़ी रही। अनुभव की भूल तो अनुभव से निकलेगी, वो कोई समझ से निकलने वाली चीज नहीं है। इसलिए थियरी को समझ को अप्लाई करना पड़ेगा परिणमन में। हमें आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं है और वो मन बुद्धि विचार से तो जाना नहीं जा सकता। जब प्रथम बार योग्यतावान मुमुक्षु को आत्मानुभव हुए तो किस आधार से समझे कि ये मेरा आत्मस्वरूप है? यदि भ्रांति को ही आत्मस्वरूप समझे तो इसका उपाय क्या है, कृपया स्पष्ट करें। अच्छा, आपको मुंह में चीनी डाल दिया, हाँ रखा मुंह में पेपरमेंट चीनी गुड़ कुछ भी मीठी चीज, और फिर आप ये पूछेंगे कि हमको कैसा स्वाद आता है समझाइए। हाँ ऐसा आत्मानुभव है वो तो अपना ज्ञान में ज्ञान वेदन के साथ आनंद का वेदन आता है, शांति का वेदन आता है, और उसमें उसके पहले वेद ज्ञान के प्रोसेस में राग का निषेध होता है, राग साथ में नहीं आता है तो पता चल जाता है। लेकिन जिसको और उसमें निशंकता आती है, लेकिन जिसको शंका होगी, मानसिक शांति में आत्म शांति का वेदन मान लिया, उसको शंका रह जाएगी कि ये आत्मानुभव है या और कुछ है। तो ये जो शंका है वो इसका सबूत है कि अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव प्रदेश प्रदेश में होता है, मन में नहीं होता है, दिमाग में नहीं होता है, पूरे प्रदेश में होता है, पूरे क्षेत्र में होता है। तो इसका भी वर्णन आता है, आगम में भी आता है, और ज्ञानी से भी वो बात समझ में आ सकती है, तो उसे वो टैली हो जाता है। प्रथम बार अनुभव करने की विधि क्या है? प्रथम बार अनुभव करने की विधि का तो सारा ही एक उन्नति क्रम का चैप्टर लिखा गया है कि जिसको बहुभ्रमण की चिंता से उदासीनता का क्रम चालू होता है उसको पूर्णता का लक्ष्य होता है, ज्ञानी की खोज होती है, स्वरूप की अपूर्व भावना पैदा हो जाती है, और उस भावना के वशात अपने परिणमन का अवलोकन होता है, अवलोकन से प्रयोग पद्धति चालू होती है, और उस अवलोकन के दौरान स्वभाव और विभाव जाति के परिणाम पर से जाति की पहचान आती है, और जाति की पहचान आने से स्वरूप की पहचान होती है, स्वरूप निश्चय होने के बाद बहुत इसकी महिमा आती है, और स्वरूप सम्मुखता का पुरुषार्थ और तीव्र रस पैदा हो जाता है, तो आगे जा करके उस अनुभव को ले आता है। उतना क्रम है। ऐसे सीधा कोई पूछे कि स्वरूप अनुभव प्रथम बार कैसे करे तो ऐसे सीधा नहीं हो जाता है, सब इसकी जो चेन है और उसकी जो चैनल है वो चैनल के थ्रू जो काम होता है वो व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से होता है, ऐसे नहीं हो जाता है।
जिस जीव को स्वभाव जाति की पहचान होती है मानसिक शांति को ठहरा सकता है
नहीं?
वो मानसिक शांति को ठहराएगा
नहीं, उसमें तो क्या है कि मानसिक शांति तो विभाग जाती है, कैसे ठगाएगा? वो मानसिक शांति में ठगाएगा नहीं, क्योंकि वो विभाग जाती है। तो विभाग जाति के परिणाम शांति का आंचल ओढ़ करके अगर आएगी तो भी उसको पकड़ेंगे, उसका निषेध करेंगे कि वो नहीं, वो नहीं, हमें चाहिए वो चीज नहीं है, उसका भी निषेध आएगा। इंद्रध्वज विधान मंडल, सिद्ध चक्र विधान आदि पूजन आत्महित में सहायक है क्या? बैठ करके नक्की कर लेना, पूछने की क्या जरूरत है, विधान में शामिल होकर के नक्की कर लेना कि परिणाम कैसे चलते हैं। हाँ, ये सब चला है, अभी हमको इसकी टिप्पणी में नहीं जाना है, अपने आप को अनुभव करके फाइनल कर लेना। हाँ, आजकल तो चलता है, सब हो ही रहा है। जेमने परिभ्रमण ने दुख लागी, पूर्णता नु लक्ष्य बंधन छे, ते जीव ने पूर्व भूमिका मा क्या प्रकारे विचारधारा ने प्रयोग चाले? मैंने पूर्व भूमिका में अवलोकन में प्रयोग चाले, विचारधारा में आत्मकल्याण की मुख्यता रहे और प्रयोग में है जेमने परिभ्रमण दुख लागे पूर्णता नु लक्ष्य बंधाणु छे ते जीव ने एम दीदो छे। તમારું છે તો થોડું લખવા ફેરથી છે, ગુજરાતી ઓછું આવડે ને, કાંઈ વાંધો નહીં, સીધું જ પૂછો ને આપણે। એ પહેલા તો એને શું છે કે જે લક્ષ બંધાવા પહેલા એને પરિભ્રમણનું દુઃખ લાગે, એક મરણ કે મરણના કારણની ચિંતા થાય, એનાથી બહુ વિશેષ પ્રકારની ઘણી ચિંતા ઊભી થાય કે જેથી એનો ક્યાંય પણ ચેન પડે નહીં, એ તો ઓટોમેટિક ઉદાસીનતા આવી જાય। પહેલો ક્રમ ત્યાંથી લીધો છે, 20માં અંકમાં એ વિષય લીધો છે, નહીં એમાં પ્રયોગનો સવાલ નથી, પહેલા તો વિચારણા છે, પ્રયોગ તો અવલોકનથી શરૂ થાય છે, એ પહેલા પ્રયોગ નથી શરૂ થતો, પ્રયોગ તો પૂર્ણતાના લક્ષ્ય પછી પ્રગાઢ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિની ભાવના ઉત્પન્ન થતા અવલોકન ચાલે, એ પ્રયોગ યથાર્થ છે, એ પહેલા પ્રયોગની ભૂમિકા નથી, એ પહેલા સુવિચારણાની ભૂમિકા છે, એમાં આત્મકલ્યાણ કેન્દ્ર સ્થાનમાં છે અને ભવભ્રમણની ચિંતાવશ એ આત્મકલ્યાણ કરવા માંગે છે। તો મારે હવે કોઈ પણ કિંમતે ભવભ્રમણ ન જોઈએ, તો એ માટે કૃપાળુ દેવનો 128 નંબરનો પત્ર બહુ સરસ છે। વેદનમાં હોય, ચિંતા તો વેદન સ્વરૂપ છે, વિચાર સ્વરૂપ નથી, વેદન સ્વરૂપ છે। પ્રકૃતિનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો? પોતાની મુખ્ય પ્રકૃતિને કેવી રીતે ઓળખવી, નો ત્યાગ કરવો વિસ્તારથી સમજાવવા। એમાં એમ છે કે પોતાની પ્રકૃતિ તો પોતાને ખ્યાલમાં એટલા માટે આવી જાય છે કે સહેજે બીજા કષાયો એટલા નથી થતા જેટલા એ પ્રકૃતિગત કષાયો થાય છે। જેમ કે જેની ગુસ્સાની પ્રકૃતિ છે તો ગમે તેની સાથે સામાન્ય વાતમાં પણ ગુસ્સો કરી દેશે, માયાની પ્રકૃતિ છે તો વાત વાતમાં જૂઠું બોલી લેશે। શું એમ, જેની જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ પોતે થોડોક ખ્યાલ કરે તો તરત સમજાઈ જાય એવી વાત છે। અને પ્રકૃતિનો ત્યાગ તો આત્મહિતની તીવ્ર ભાવનાથી સહેજે થાય છે, જેને આત્મકલ્યાણ કરવું છે, ભવભ્રમણનો અભાવ કરવો છે, એની તીવ્રતા તીવ્ર ભાવના આવે,
तो प्रकृति मौली पड़े, त्याग सीधो नहीं थत पण मौली पड़े। अने खास करीने जो सत्संग होय, नानी पुरुषनो सत्संग होय तो एमां प्रकृति सत्संगमां उत्पन्न जे अत्यंत भक्तिना परिणाम छे ए प्रकृतिने छोड़ावी दीए छे। पहला भोग भ्रमण की चिंता लागवी जोईए, पण जे जे भाव जीवे कर्यो ते तो विस्मृत थई जाय छे। जेम के नारकीनो भाव में केटली प्रतिकूलता, पाछा त्यांथी बीजी गति में जेम के त्रिंच ते तो नजरे जोवाय छे के भार वहन भूख दुख, पण ते खाली विचार में दुख आवे छे। हाल में मनुष्य पर्याय में आकुलता वक्त थोड़ी वार दुख लगे कि आ संसार असार छे, पण पाछी ज्यां अनुकूलता आवे दुख विस्मरण थई पाछा हता तेवा ने तेवा कांसमां लिखू छे धोयेला मूळा जीवा ऐसे कहे छे। आवी स्थितिमां भोगभ्रमणनुं दुख केवी रीते लागे, भोगभ्रमणनुं दुख केवी रीते लागे तो एक मोटो रोग थाय त्यारे एनी चिंता केवी रीते थाय ए शीखडावुं पड़े छे। वो शीखाना पड़ता है। जेनो प्रश्न छे ए जो व्यापारी होय, मानो के तो आपणो व्यापार बंद थई जशे तो एनी चिंता करवी पड़े, दुकान भांगी पड़शे तो, दिवाळी निकळशे तो, हा एनी चिंता सेवा पहेला केवी थाय छे, छाती में भीस आवे कि ना आवे, है कितना चिंता में आवी जाए, बधुं भूली जाए। तो जो आ भाव में मिथ्यात्व सहित आयुष्य पूरु करशो तो फरीने मनुष्य भाव मळवो बहुत दुर्लभ छे, अने अनंता भाव रे मारो आवशे तो कितला दुख वेठवा पड़शे। एक थोड़ी पीड़ा पण सहन करवी नथी, सहन करवी गमती नथी, तो पार नहीं पीड़ा नो दुख नो। गंभीरता से विचार करवो जोईए। एवा ने एवा फरीने थई जईए छे, आनु कारण ए छे कि जे विषयनी गंभीरता छे ए विषयनी गंभीरता पूर्वक एनो स्वाध्याय के श्रवण के चिंतन के थतुं नथी। लाइटली एने लई लेवामां आवे छे, हळवू करीने, जेनी घणी किंमत छे एने साव हळवू करी देवामां आवे छे, एने लईने एनुं वजन रहेतुं नथी, एमां रस आवतो नथी, अने बीजो रस घूणो पीड्यो छे। ज्यारे आवुं थई जाय छे एनो अर्थ ए छे के वर्तमान परिस्थितिमां जे काई सुख दुःखना प्रॉब्लेम नाना मोटा ऊभा थाय छे त्यां आखे आखो टींગાઈ ગયો છે અને ઘણો રસ લીએ છે, ત્યાં એને સાવધાન થવાની જરૂર છે કે આમાં નુકસાન છે, આમાં ભવ ભ્રમણ વધારી રહ્યા છીએ, અને આમાંથી જાગૃત થઈને અને ગૌણ કરી છૂટકો છે, જેની મુખ્યતા છે એને ગૌણ કરી છૂટકો છે। આપણે જોઈએ છીએ અનંત સુખ ને અનંત શાંતિ, સાવ મફતમાં જોઈએ છીએ, તે કઈ કિંમત ચૂકવવી છે? 500 રૂપિયાની ચીજ 500 રૂપિયામાં લેવી છે કે 5 રૂપિયામાં લેવી છે? કે 500 રૂપિયાની ચીજ એક વખત 550 લાગે તો પણ લેવી છે? તૈયારી કેટલી છે? આટલી વાત છે। એમ અનંત શાંતિ ને અનંત સુખ જોઈએ છીએ તો કિંમત કેટલી ચૂકવવી છે? કે જેને નિર્ધાર હોય કે એટ એની કોસ્ટ મારે આ લેવું છે, એનું કામ છે, બીજાનું કામ નથી આમાં, બીજાનું કામ નથી આમાં, કોઈની કિંમત ચૂકવવી પડે તો હું ચૂકવવા તૈયાર છું। મારે આ જોઈએ એટલે જોઈએ, આ ભાવમાં કામ કરી જ લેવું છે, આ ભાવ એના માટે જ મળ્યો છે એમ ભાસવું જોઈએ, લાગવું જોઈએ। બહુ મોટી ચીજ સિદ્ધ પદ લેવાનું છે, કેટલી કિંમત આપતી છે સિદ્ધ પદની? કે આખા સંસારને સ્વાહા કરવાની તૈયારી છે,
નિર્ધાર માં એને કિક મારવી જોઈએ પહેલી વખત, જે થવું હશે એ થશે, એક વાર આ કરી લેવું છે, પછી બીજું કરવું હશે એ કરશું, અત્યારે આ કરી લેવું છે, એમ જોર ન આવે તો શરૂઆત જ ન થાય.
શરૂઆત કરવાની આ શરત છે,
એ શરત છે કે આખા સંસારને કિક મારવી પડશે પરિણામમાં અભિપ્રાયમાં. બારમાં તમારે ક્યાંય ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. બારમાં કોઈ ચીજ ને અડવાની જરૂર નથી. ત્યાગની ભૂમિકા નથી આ, મોક્ષતા એ ત્યાગની ભૂમિકા નથી, એ પાંચમા ગુણસ્થાનથી શરૂ થાય.
એની આવશ્યકતા છે,
કોઈ જરૂર નથી. જાતે સ્મરણ હોને છે કોઈ લાભ નહીં, હોને છે કોઈ નુકસાન નહીં. મને માનનું બહુ જ રહે છે, તો માનને પ્રકૃતિ કહી શકાય? હા, તો તેને કેવી રીતે અર્પણ કરવી? માન નમ્રતાથી જાય, મારામાં કાંઈ જ નથી, મારું કોઈ ઠેકાણું નથી, મારી યોગ્યતા કોઈ નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી, મારું કાંઈ ઠેકાણું નથી, એવું સમજાય તો માન જાય, નહીતર અહમ ભાવ આવ્યા વિના રહે નહીં. શિબિર મેં જ્ઞાન રસ ચખને કે ઉપરાંત અગલે શિબિર તક હમે એસા મજબૂત પ્રોગ્રામ દેને કી કૃપા કરે તાકે ઉસે પુષ્ટ કરકે હમારે અનુભવ કી વૃદ્ધિ હોકર ભવિષ્ય મેં પ્રવચન આ હેતુ દોડ કર આ જાય, પ્રવચન લાભ હેતુ દોડ કર આ જાય. બસ જો રસ ચખા હૈ ઉસી કા એ આગે કા પ્રોગ્રામ, તો ક્યાં અપની યોગ્યતા કો દેખ કરકે પ્રોગ્રામ બનાના હૈ, જીતની યોગ્યતા હૈ વહાં સે આગે બઢના હૈ, પહેલે હમ હમારી યોગ્યતા કા ભાન કરે, હમ કહાં ખડે હૈ ઓર એક કદમ કૈસે આગે બઢે વો બાત સમજ લે તો આગે કા પ્રોગ્રામ મિલ સકતા હૈ. અપની યોગ્યતા કો સમજે બિના આગે ક્યાં કરના હૈ વો ભી સમજ નહીં પડેગા, તો પહેલે અપને કો અપને આપ કો સમજે કે હમ કહાં ખડે હૈ. કૃપાળુ દેવને જો સંસાર સમાગમ મેં વિભાગ કરે હૈ, કૃપયા સ્પષ્ટ કીજીએ કોણ સે પ્રશ્ન પર હૈ? વો બેબી કા પ્રશ્ન હૈ ને, હરીશજી કા બેબી કા, હા ગ્રંથ દીજીએ, નિકાલ સકોગે? હા નિકાલો. इसके पहले दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, क्या अपने को परखने का थर्मामीटर आत्मा स्वयं है? हाँ, आत्मा स्वयं ही अपने का परख करती है, दूसरा थर्मामीटर की जरूरत नहीं है. पर अपने को निरीक्षण करने वाला थर्मामीटर भी आत्मा स्वयं है, वो भी स्वयं ही है, दूसरा कोई अपने का निरीक्षण करने का सवाल नहीं रहता है, अपने को ही अपने का देखना है. निकला, મિલ
ગયા?
ક્રોધમાં ક્ષમા, यदि तू स्वतंत्र हो तो संसार समागम में अपने आज के दिन के निम्नलिखित विभाग कर. समय का बात है वो, कि अगर तू स्वतंत्र हो अपने जीवन में तो पूरा जो दिन है उन दिन में तुमको
कितने कितने पीरियड में क्या क्या करना चाहिए उसका तुम नियम करो, लाइफ को, डेली लाइफ को नियमित करो। एक प्रहर भक्ति कर्तव्य, एक प्रहर धर्म कर्तव्य, एक प्रहर आहार प्रयोजन, एक प्रहर विद्या प्रयोजन, दो प्रहर निंद्रा और दो प्रहर संसार प्रयोजन। आठ प्रहर है, 24 घंटा है ना, हाँ, तो 24 तीन कलाक का एक प्रहर होता है, तो तीन घंटा तो भक्ति करो, 3 घंटा स्वाध्याय ध्यान आदि करो, ठीक है, 6 घंटा वो हो गया। हाँ, दो प्रहर 6 घंटा निंद्रा लो, 6 घंटा संसार की प्रवृत्ति करो, जो रोटी रोजी के लिए जो करना है वो करो, और एक प्रहर विद्या प्रयोजन करो, अगर पढ़ाई करना हो तो, या कोई भी बात सीखनी हो या समझनी हो, और एक प्रहर 3 घंटे में सभी आहार आ जाना चाहिए, वो तो बहुत है, हो सकता है, ऐसा नियम करो तो अच्छी बात है। ऐसा किया है, समय हुआ है।